नानी माँ की आंखें ये सब देखकर भर आई थीं। हॉल का माहौल जो कुछ देर पहले तक हल्का और खुशियों से भरा था, अब एक बार फिर भारी और डलावना हो चुका था। और वो अभी अपने बेटे बहू को भी इस बारे में नहीं बता सकते थे, क्योंकि दोनों ही पूरी तरह से परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक उन्हें कन्फर्म नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी आखिरकार है तो है कहाँ। काफी दिनों से प्रियंका से उनकी कोई बात नहीं हुई थी। उन्हें लगा था कि प्रियंका शायद घूमने फिरने में उनसे बात नहीं कर रही है, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि आखिर उनकी बेटी पर क्या मुसीबत टूट पड़ी है, तो ना जाने उनके दिल पर क्या बीतेगी। नानी माँ को बड़ा ही बुरा लग रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो करें क्या। वहीं वंशिका ने प्रियंका को तुरंत होश में लाने के लिए एक बार फिर से इंजेक्शन दिया, जिससे प्रियंका अब थोड़ा सा शांत होने लगी थी। तभी आस्था वंशिका को देखकर बोली थी, क्या बात है वंशिका, ये प्रियंका दीदी इस तरह से बिहेव क्यों कर रही थी? कहीं एंटीडोट का गलत असर तो नहीं हुआ है? तभी वंशिका बोली थी, ऐसा कुछ नहीं है और यू डोंट नीड टू वरी। एंटीडोट ने पूरा और फुल तरीके से असर कर दिया है और मुझे लग रहा है कि प्रियंका की यादें भी लौट आई हैं। तुमने देखा नहीं वो किस तरह से पहले की तरह बिहेव कर रही थी? शायद याद आने के बाद राजवीर ने जिस तरह से उसके साथ किया था वो सब कुछ उसे याद आ रहा है, इसी वजह से वो इस तरह से पैनिक कर रही थी। अब ये सुनकर कहीं ना कहीं सभी की आंखों में राजवीर के लिए गुस्सा और नफरत साफ नजर आ रहे थे। लेकिन फिलहाल तभी एक बार फिर से बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। तब तक नानी माँ ने मारिया और टाइगर को भी उनके बच्चे के साथ आराम करने के लिए भेज दिया था और रौनक को देखकर बोली थी, रौनक बेटा, बच्चे बहुत छोटे हैं, तुम बहुत देर से उनसे दूर हो, अब जाओ, जाकर बच्चों को संभालो। ये बोलकर उन्होंने रौनक को भी वहां से भेज दिया था और आस्था को बहुत समझाया कि वो भी अपने रूम में जाकर आराम करे। इतने बड़े भागदौड़ के बाद वो थक गई थीं। प्रियंका के साथ वो रात में रुक जाएंगी। लेकिन आस्था ने नानी माँ को देखते हुए कहा, नहीं नानी माँ, आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि पता नहीं प्रियंका अभी किस तरह का बिहेव कर सकती है। तभी वंशिका बोली, आप फिक्र ना करें, अभी मैंने उसे ऐसा इंजेक्शन दिया है कि वो अगली सुबह ही उठेगी। उसे आप शांति से सोने दीजिए, तब तक मैं यहाँ पर नर्स छोड़ देती हूँ, नर्स उसका ध्यान रखेगी। आपको भी इस वक्त आराम की सख्त ज़रूरत है नानी माँ, आखिरकार आपका बूढ़ा शरीर पूरी रात इस तरह से यहाँ बैठकर नहीं गुजार सकता। लेकिन नानी माँ ने आस्था से कहा था, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मेरी कितनी ज़्यादा फिक्र कर रही हो, लेकिन तुम तो जानती ही हो ना, प्रियंका के लिए मैंने कभी कुछ खास नहीं किया है। सच बताऊं तो उसके साथ कभी समय बिताने का मौका ही नहीं मिला, और अब अगर कान्हा जी ने हमें ये मौका दिया है तो मैं उसे गंवाना नहीं चाहती। इस वक्त प्रियंका को हमारी बेहद ज़रूरत है, और वैसे भी वंशिका बेटी ने बताया तो है कि वो पूरी रात आराम से सोती रहेगी, तो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। बराबर वाला बेड है ना, हम भी यहीं सो जाएंगे, काफ़ी चौड़ा है, आराम से खुल जाता है, इसलिए तुम हमारी फिक्र बिल्कुल भी मत करो। जाओ, जाकर बच्चों को संभालो, तुम लोग आज काफ़ी थक गई हो, इतना बड़ा काम किया है, ऊपर से आज का दिन भी काफ़ी बड़ा था और दामाद जी की भी यादें लौट आई हैं, उसके बाद तो तुम्हें उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए। तुम समझ रही हो ना बेटा हमारी बात? ये सब कहते हुए उन्होंने आस्था को पूरी तरह से समझाया था। नानी माँ की बात सुनकर आस्था ने भारी मन से उनका हाथ थाम लिया और बोली, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप अपना पूरा ख्याल रखेंगी। तब नानी माँ ने दोबारा अपनी पलकें झपकाई थीं। तभी दादाजी भी एक बार फिर वहां आ गए और बोले, बहन जी, मैं यहाँ रुक जाता हूँ, आप जाकर आराम कर लीजिए। लेकिन नानी माँ ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम यहीं रुकेंगे फिलहाल। नानी माँ ने दादाजी को भी समझाया और आराम करने के लिए भेज दिया, और सब लोग अगले दिन क्या करने वाले थे इसी हिसाब से अपने अपने कमरे में चले गए। वहीं आस्था जैसे ही कमरे में गई, उसने देखा अरमान के कंधे से लगा हुआ अंश सो गया था। आस्था को देखकर अरमान ने उसको झूले पर लिटा दिया और आस्था को अरमान ने तुरंत पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। आस्था के दिल की धड़कनें काफी ज्यादा बढ़ चुकी थीं। उसे ऐसा लगा जैसे कि एक बार फिर से उसकी जिंदगी का प्यार लौट आया हो। फिलहाल आस्था ने भी अरमान के चौड़े से सीने में अपना सर छुपा लिया और बोली थी, आप जानते हैं आपसे छुप छुप कर मिलना कितना ज्यादा कष्ट वाला था। जब हमें आपकी यादें गईं, उस वक्त हमें लगा कि हमारी पूरी सांसें ही रुक गई हों। हम आपके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते मिस्टर सिंघानिया, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब सोच भी नहीं सकते कि हमारा एक एक पल आपके बिना किस तरह से गुजरा है। आस्था ने खुल्लम खुल्ला अरमान को अपने प्यार का इजहार किया।
लेकिन अरमान ने तुरंत आस्था को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे गोल गोल लेकर घूमने लगा था और बोला था, मैं जानता हूँ मेरी आफत की परी, तुम्हें काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। और वैसे भी अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, डेविल किंग का खेल तो अभी शुरू हुआ है, अरमान ने रहस्यमय अंदाज में कहा और आस्था को अपनी बाहों में समेटकर उसे ढेर सारा प्यार करना शुरू कर दिया था। और आस्था भी दिल खोलकर अरमान के प्यार का स्वागत करने लगी थी। अरमान ने तुरंत झुककर अपने होठों से आस्था के होठों को छू लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। आस्था एक पल में ही उस पल की गर्माहट और एहसास में खो गई थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी और उसकी हल्की हल्की सिसकियां कमरे की खामोशी में खुलने लगी थी। आस्था को इस तरह अपने प्यार में डूबा हुआ देखकर अरमान के चेहरे पर एक गहरी और शरारती मुस्कान आ गई थी। वो जानबूझकर आस्था को अपने और भी करीब कर रहा था, उसकी हर धड़कन को महसूस करते हुए। आस्था का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो बार बार अरमान को हल्के से रोकने की कोशिश करते हुए धीमी आवाज में बोली थी, अरमान प्लीज रहने दीजिए ना। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आज अरमान अपनी मोहब्बत में आस्था को पूरी तरह डुबो देना चाहता था। कमरे का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। दोनों की धड़कनों और सांसों की गर्माहट उस खामोशी में साफ महसूस हो रही थी। और फिर एक नाजुक सा पल ऐसा आया जब आस्था की मदहोश और प्यार भरी सिसकियां पूरे कमरे में धीरे धीरे गूंज उठी और वो पल दोनों की मोहब्बत को और भी गहरा बना गया। वहीं दूसरी ओर आज सभी कपल्स के चेहरों से एक अजीब सा बोझ उतर गया था, क्योंकि अरमान का डर, अरमान की यादें, सब कुछ वापस आ चुका था। तो अब कहीं ना कहीं सभी को लग रहा था कि उनके सिर पर शायद एक ऐसा मुहाफिज मौजूद है जो उन्हें किसी को कुछ भी नहीं होने देगा, और सभी पूरी तरह से बेफिक्र थे। फिलहाल आकाश रश्मि को आराम करने के लिए कमरे में ले आया था। ज्यादा देर तक खड़े होने की वजह से रश्मि के पैर पूरी तरह से सुन्न हो गए थे, लेकिन आकाश ने बड़ी नानी माँ के दिए हुए तेल का इस्तेमाल करते हुए रश्मि के पैरों में धीरे धीरे मसाज देना शुरू कर दिया था। रश्मि को काफी अच्छा भी लग रहा था और वो बोली थी, आपको पता है आकाश, हम ठीक होते तो हम देखते हम किस तरह से सब लोगों की मदद कर देते। लेकिन आकाश ने रश्मि के माथे को चूमकर कहा था, तुम कितनी बहादुर हो ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? और ज्यादा स्ट्रेस भी मत लो, ये हमारे बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैसे भी मैडम तुम डॉक्टर हो, तुम दूसरों को ज्ञान देती हो, फिलहाल मैडम तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आराम करना है। ये बोलकर आकाश ने बड़े हल्के हाथों से उसके सिर में मसाज करना शुरू कर दिया था।
और फिर रश्मि जल्दी ही गहरी नींद में सो गई। लेकिन रश्मि के सोते ही अचानक आकाश के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से डार्क हो गए थे। वहीं दूसरी ओर कमरे में रौनक ने अपनी बहादुरी के किस्से सुनाने शुरू कर दिए थे। किस तरह से वो सम्राट के डाकवेला गई, उसने वहां पर क्या क्या किया, सारी बातें बड़े ही बहादुरी भरे अंदाज में उसने आहान को सुनाई। और उसके बाद अपनी प्रिंसेस को सुनाने के बाद आहान को अपनी बाहों में लेकर वो गहरी नींद में सो गई। लेकिन अचानक आहान बैठ गया और उसकी आंखों का रंग अजीब सा हो गया था। वो रौनक और प्रिंसेस को सोता हुआ देखकर चुपचाप वहां से बाहर निकल गया। इसी तरह राधिका सुमित के साथ थी, वो उसकी बाहों में सुकून से सोई हुई थी। लेकिन राधिका के सोने के बाद सुमित भी उठा और वहां से बाहर आ गया। एक एक करके सभी कपल्स में से सभी लड़के वहां से निकलकर बाहर आ चुके थे और सीधे तहखाने में जमा हो गए थे। उनके साथ अविनाश भी मौजूद था, वो टाइगर और मारिया को सुलाने के बाद वहां आ गया था। आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान, टाइगर और अविनाश इस वक्त सभी तहखाने में जमा थे। लेकिन अभी तक जिसका इंतजार था, यानी कि अरमान सिंघानिया, वो वहां नहीं आया था। वो सभी इस बात से बेखबर थे कि अरमान सिंघानिया तो इस वक्त अपनी खूबसूरत बीवी की जुल्फों में पूरी तरह से खोया हुआ था और उसे दिल खोलकर प्यार कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब लोगों के सामने आस्था को सच बताने के बाद अपनी बीवी पर प्यार जताने में उसे अलग ही सुकून मिल रहा था। उसी दौरान अचानक अरमान के हाथ में बंधी हुई घड़ी ने उसे अजीब सा सिग्नल दिया, जिसे देखकर आस्था के माथे पर बल पड़ गए। वो बोली थी, मीटिंग? आप कौन सी सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया? ये सुनकर अरमान के चेहरे पर एक हल्की सी शरारती मुस्कान आ गई और वो तुरंत आस्था के माथे को चूमकर बोला था, अभी आया। ये बोलकर उसने फटाफट कपड़े पहने, आस्था को अच्छे से प्यार करने के बाद वो वहां से बाहर निकल गया। वहीं आस्था अब रहस्यमय अंदाज में सोचने लगी थी, सारी चीजें तो सब लोगों के सामने ही है, फिर ऐसा क्या है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? ये सोचते सोचते आस्था गहरी सोच में खो गई थी। वहीं दूसरी ओर तकरीबन रात के 1 बजे एक प्राइवेट जेट डाकविला में आकर रुका था। उसमें से कोई और नहीं बल्कि राजवीर बाहर निकला था। राजवीर के हाथों में वो चमचमाता हुआ डायमंड नेकलेस था, जिसे लेने के लिए खुद सम्राट ने उसे भेजा था। उसकी कीमत का किसी को कोई अंदाजा नहीं था। उस नेकलेस को देखकर कहीं ना कहीं राजवीर काफी खुश भी हो रहा था, वरना उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि इस तरीके से उसे अपनी बीवी को छोड़कर जाना पड़ा, वो भी उस पर हुए डॉग अटैक के बाद। इसीलिए वो वहां जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिलहाल जैसे ही वो नेकलेस लेकर वापस आया था, उसके चेहरे पर अजीब सा सेटिस्फेक्शन था। उसने सोचा कि जाकर वो नेकलेस सबसे पहले अपनी बीवी के गले में पहनाएगा, उसके बाद अपनी मर्जी करेगा। ऐसी सोच के साथ राजवीर फटाफट हल्की सी मुस्कान के साथ जेट से बाहर निकला। लेकिन जैसे ही वो जेट से बाहर आया, उसने देखा कि पूरा का पूरा गार्डन सिक्योरिटी गार्ड से भरा हुआ था। सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को इस तरह गार्डन में देखकर राजवीर के माथे पर बल पड़ गए, क्योंकि आमतौर पर सिक्योरिटी गार्ड्स हमेशा डाक विला के हॉल में मौजूद रहते थे और इतना ही नहीं, सभी कमरों के सामने भी तैनात रहते थे। लेकिन इस तरह से सभी सिक्योरिटी गार्ड एक साथ गार्डन में जमा थे तो वो थोड़ा हैरान हुआ। फिलहाल बिना किसी से सवाल किए राजवीर तुरंत अंदर गया, और जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा कि ढेर सारा खाना टेबल पर लगा हुआ था और टेबल पर ही सम्राट अपना सिर टेबल पर रखे हुए सोया हुआ था। ये दृश्य देखकर राजवीर को बड़ा ही अजीब लगा। थोड़ा आगे बढ़कर उसने पानी का ग्लास उठाया और सीधा सम्राट के चेहरे पर फेंक दिया। लेकिन सम्राट की आंखें कभी खुल रही थीं, कभी बंद हो रही थीं। वो ठीक तरीके से होश में नहीं आ पा रहा था। ये दृश्य देखकर अचानक राजवीर के माथे पर बल पड़ गए। वो आगे बढ़ा और सम्राट का हाथ पकड़कर उसकी नब्ज चेक करने लगा। तभी अगले ही पल उसका ध्यान टेबल पर पड़े पिज्जा स्लाइस पर गया। राजवीर ने एक पिज्जा स्लाइस उठाई और उसे ध्यान से सूंघने लगा। जैसे जैसे राजवीर उस पिज्जा स्लाइस की स्मेल ले रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से डार्क होते जा रहे थे। अचानक वो गुस्से से दहाड़ उठा। सिक्योरिटी? सभी के सभी सिक्योरिटी गार्ड वहां जमा हो गए। राजवीर उन सबको घूरते हुए बोला, क्या हुआ है यहाँ पर? कौन आया था घर पर? जैसे ही सिक्योरिटी से राजवीर ने यह सवाल किया, सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि सम्राट ने उन्हें साफ साफ कहा था कि घर पर आज कौन मेहमान आ रहा है इसके बारे में राजवीर को कुछ नहीं बताया जाएगा। इसीलिए अब वे सब उलझन में थे कि राजवीर को सच बताएं या नहीं। लेकिन अचानक राजवीर के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और अगले ही पल वो तेजी से अपने कमरे की ओर दौड़ पड़ा। कमरे में जाकर जैसे ही उसने देखा कि उसकी बीवी वहां नहीं है, अब तो राजवीर का दिमाग सचमुच फटने को तैयार हो गया था। क्या होगा जब राजवीर को उसकी बनाई हुई बीवी, जिसे उसने अपनी मरी हुई बीवी नैना की शक्ल दी थी, अब वो नहीं दिखेगी, तब क्या होगा?